प्यारे शिव बाबा के रचे हुए इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के आप भी वो अमूल्य रतन हैं जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है। साकार पालना का रिटर्न करते हुए आप सभी यज्ञ वत्सों की बड़े ही प्यार से रूहानी पालना करते हैं। मम्मा के गुणों की साकार मूरत आपकी मधुर वाणी सबके दिलों में मधुरस घोल देती है। ब्रह्मा बाप समान प्रेम से परिपूर्ण आपका सरल स्वभाव सबको अपनी ओर बरबसी आकर्षित करता है। आपके मुखारविंद से उच्चारित साकार पालना के अनुभव ब्रह्मा वत्सों के मन को भाव विभोर कर देते हैं। आपको जगदीश भाई जी के साथ रहकर सेवाएं करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका व्यक्तित्व साकार बाबा मम्मा दादियों और वरिष्ठ भाइयों के गुणों का प्रतिबिंब है। आपको देखा माना मम्मा और बाबा को देख लिया। ऐसी रूहानी प्यार परमात्म ज्ञान गुणों एवं शक्तियों से चैतन्य दिव्यात्मा आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम एक हाथ की अव्यक्त ताली से दीदी जी का अभिवादन करते हैं। आप बहुत ही सुंदर विषय लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपकी क्लास का विषय है तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने। आप 60 वर्षों से बाबा के इस ज्ञान में समर्पित हैं और वर्तमान में दिल्ली में शक्ति नगर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रशिया में जो विदेश का एक देश है रशिया में आप प्यारे बाबा की सेवाओं को प्रारंभ करने के निमित्त बने और अभी यज्ञ में जो महिला विंग है विमेन विंग उसके आप चेयर पर्सन हैं। प्यारी दीदी के लिए मेरे मन में कुछ भाव उमड़ रहे हैं वह आपके सामने रख रही हूं। बड़ी सरलचित निर्माण है दीदी निरंकार निर्विकार है दीदी। मम्मा बाबा को फॉलो करने वाली आदर्शों की खान है दीदी आदर्शों की खान है दीदी चक्रधारी दीदी जी।
ओम शांति। इन्होंने बहुत कुछ कह डाला अब लिखा हुआ है जरा अच्छे शब्दों में बोलना है तो कोई बात नहीं बोल दिया। बाकी तो मामा बाबा ही हैं। हम उनके समान इतने भी बन जाएं तो अहो भाग्य है हमारा। चाहे विषय में स्वयं ही कहा कि तीव्र पुरुषार्थ पर कराऊंगी लेकिन आप सबको देखकर मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है जिस भूमि पर आप हम सब इस समय बैठे हैं ये वो भूमि है जिसमें साकार होकर सर्वशक्तिवान उस प्यारे बाबा ने किस प्रकार यज्ञ रचा और कैसे यज्ञ वत्सों को जन्म दिया और कैसे उनकी पालना की। कण कण में वे याद समाई हुई है। मुझे उस विषय से हटकर पहले प्यारे बाबा मामा की ही कुछ बातें सुनाना चाह रही थी क्योंकि आप भी देख रही हूं कि उस समय के आप में से कोई भी नहीं है इसलिए थोड़ा माता पिता से परिचित करा दूं। ये स्थान जहां पर इस समय हम बैठे हैं शुरू में ये बहुत बड़ा पहाड़ था पूरा ही पहाड़ था और बाबा का कमरा पास ही है। छोटा सा बाबा का कमरा था, बाहर खुली जगह थी जहाँ गर्मियों के दिनों में बाबा की खटिया बिछती थी और बाबा खुली हवा में बाहर सोते थे। मच्छरों के कारण मच्छरदानी लग जाती थी और बाबा यहाँ विश्राम करते थे। मुझे आज उस पहाड़ी की याद आ रही है। रतनमणि दादी जी, हम कन्याएं जब आती थी तो वो हमको रात को ही लेकर बैठती थी। 10:30 बजे जब यज्ञ कार्य पूरा होता था तो 11 बजे ही हम लोगों से बैठती थी, तो कई बार 12-1 बजा देती थी। तो आदत बनी हुई थी रात को लेट तक बैठना और लेट तक ज्ञान चिंतन करना। कैसे यज्ञ वत्सों की पालना यज्ञ पिता ने की वो मुझे आज इस स्थल पर आते ही याद आया कि यहाँ जब ऊंचा पहाड़ था तो हम 3-4 कन्याएं थी। ऐसे मन में सोचा कि आज क्लास तो हमारी 11 बजे से 11:30 हो गई, तो 12 बजे हैं, तो क्यों नहीं चलकर ऊपर पहाड़ पर योग करेंगे। ये बड़ी फेमस बात है। कहते बीरबल ने एक बार पूछा अकबर ने बीरबल से कि सबसे दुनिया में झूठ कौन सा किसको कहेंगे, तो उसने यही कहा कि 4 महिलाएं एक खटिया पर बैठी थी बड़ी चुप और शांत होकर के, तो सारे खिलखिलाकर हंस पड़े कि 4 महिलाएं एक खटिया पर बैठे और चुपचाप बैठे, ये हो कैसे सकता है। और सचमुच हमने प्लान तो यही बनाया था कि पहाड़ी पर चलकर योग करेंगे आज। तो हम 4 बहनें थी, बड़े धीरे धीरे पहाड़ी पर तो चढ़ गए, उस साइड से चढ़े हम पहाड़ी पर और ऊपर चढ़कर बैठ गए। और बाबा इधर बाहर ही सोए हुए थे अपने कमरे के बाहर, और जब हम ऊपर चढ़कर बैठे तो योग तो जब लगे तब लगेगा, पहले बातचीत तो होगी। अब धीरे धीरे भले बहुत ज्यादा ऊंची नहीं लेकिन फिर भी जब 4 व्यक्ति इकट्ठे बात करते हैं तो आवाज तो होती है, और पहाड़ों में आवाज विस्पर करती है, थोड़ा ज्यादा गूंजती है, ये हमें मालूम नहीं था। हम तो अनजान थे इस बात से, हम समझ रहे थे हम आपस में ही बात कर रहे हैं। कहीं हमारी आवाज बाबा के कानों में चली गई कि यहाँ कोई पहाड़ों में है और उसके बोलने की आवाज आ रही है। तो बाबा विश्व रतन दादा आगे ईश्व बहन का जो ऑफिस सब आपको दिखाया होगा, किस किस का कहाँ कहाँ ऑफिस, कैसे कैसे बाबा बैठते थे, कहाँ बैठ के पत्र लिखते थे। तो विश्व किशोर दादा अपने उस तरफ ही सोते थे, तो बाबा गए दादा के पास, कहा बच्चे कोई पहाड़ों में आज है, विस्पर की आवाज आ रही, चल के देखना चाहिए, मानो कोई भी बैठ सकता है पहाड़ों के अंदर। तो बाबा के पास बड़ी टार्च थी, तो बाबा ने अपनी टार्च उठाई, विश्व किशोर दादा टार्च को पकड़े हुए, बाबा और विश्व किशोर दादा दोनों पहाड़ की तरफ, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो आराम से ऊपर बैठे, धीरे धीरे पहाड़ की तरफ आए और लाइट ऐसे की, जब लाइट की तो हमारा ध्यान गया कौन है, तो देखा तो बाबा विश्व किशोर के लिए हुए ऊपर आए हैं, और देखा कि यहाँ कौन है, तो हम चारों खड़े हो गए। बाबा ने कहा बच्चिया इस समय यहाँ क्या कर रही, योग लगा रहे थे। अब योग लगा रहे थे या गप्पे मार रहे थे वो तो हम समझ सकते हैं, योग लगा रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी आओ नीचे और जाकर के विश्राम करो, सुबह योग लगाना, अभी सो जाओ। तो हम नीचे उतर आए और अपने अपने कमरे में चुपचाप भाग गए, ये तो बाबा को ही पता चल गया। तो मैं देख रही थी कि यज्ञ रक्षक बाबा स्वयं विश्व किशोर दादा के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है और अपनी टार्च लिए हुए। कह भी तो सकता था किसी को कि बच्चे कोई आवाज आ रही है, जाओ जाकर देखो, लेकिन नहीं, स्वयं साथ चढ़ा देखने के लिए कि आज पहाड़ों में कौन है। तो जिस यज्ञ रक्षक ने इतने बड़े यज्ञ का निर्माण किया, ऐसे यज्ञ के हम ब्रह्मा वत्स, हमारा कितना फर्ज बनता है कि इस यज्ञ के कणे कणे की संभाल करें। यज्ञ में किसी तरह भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये यज्ञ पिता, परम पिता मतेश्वरी माँ, जिनके भरसक प्रयत्न से ये यज्ञ चला है और आज ये यज्ञ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये वो स्थल है जहाँ आप और हम सब इस समय बैठे हुए, जहाँ चारों तरफ बाबा चक्कर लगाते थे, वो भी समय था। घर है तो घर में बाप अपने घर में घूमेगा तो सही, और कई बार कई नए नए बच्चे आ जाते थे, नए मानो ज्ञान के इतने पुराने नहीं होते थे, तो बाबा को जो ही देखते थे तो हाथ जोड़ देते थे। तो बाबा कहता था मेरे पंडा बच्चे कुछ भक्तों को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि भक्त उसका हाथ जोड़ना एक नियम रहता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो मालिक होते हैं। अब बाबा को तो घर में इधर से उधर आना जाना सब जगह पर है, और अगर हर समय हाथ जोड़ेंगे तो बाबा को भी तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहता था ये बाबा को भी हाथ जोड़ना होता है, क्योंकि वो हाथ जोड़ते हैं। तो बाबा ने विशेष निशानी रखी भक्त बच्चे। भक्त का मतलब बाप को पहचानने वाले बच्चे बाप से दृष्टि लेंगे, और भक्त बच्चे बाप से दृष्टि नहीं लेंगे, वो केवल हाथ जोड़कर सिर नवाकर आंखें नीचे कर लेंगे, ये उनकी निशानी होगी। तो बाबा कहता था जब बच्चों को लाओ तो उनको बता कर लाओ कि कहाँ जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। कैसे मामा अपने घर में मामा फ्रॉक पहनती थी और पजामा पहनती थी, जब बाहर जाती थी सेवाओं पर तब साड़ी पहनती थी, वैसे घर में फ्रॉक और पजामा ही पहनती थी, फ्रॉक पजामा और चुन्नी लेकर। तो मामा भी इधर उधर घूमती थी, बाबा भी अपने घर में चक्कर लगाते थे, कभी किचन में जाते, कभी इधर से रूम को देखते, कभी यहाँ छोटा सा बगीचा बनाया था बगीचे को देखते, और कभी कभी हम बच्चों को लेकर बगीचे में आ जाते, और बगीचे में बाबा ने एक पौधा लगाया था जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, जिस पौधे के उंगली लगी नहीं, दूर से ही ऐसे किया नहीं और वो ऐसे कर लेता। तो हम लोगों की फोटोज भी थी कि कैसे बाबा ऐसे पांव के बल बैठे हुए हैं और हम बच्चों को साथ बिठाया है। क्या हो बच्चे, तुम्हें मैं दिखाऊं कि मेरे कई बच्चे छुई मुई कैसे। तो वो पौधा दिखाते थे, देखो ये पौधा देखा, सबने देखा, चलो अब लगाओ इसको हाथ। तो हाथ दूर से रखना, दूर दूर लगाना नहीं, लगाना नहीं, दूर ही रखते तो वो तो मुरझा के मुंह नीचे कर लेता। तो बाबा कहता था अभी बात हुई नहीं, बात अभी होनी है, होने से पहले ही उन्होंने अंदेशा लगा लिया कि पता नहीं ये क्या कहने जा रहे हैं, कहीं मेरे विषय में ही तो नहीं कहने जा रहे। ऐसे मेरे छुई मुई बच्चे भी होते हैं। तो बाबा हर बात में अपने बच्चों को शिक्षा देते, अगर पौधा दिखाते तो शिक्षा देते, फूल दिखाते तो शिक्षा देते, कभी तोड़कर फूलों को टोकरी में लेकर चले जाते क्लास में, और टोकरी को लेकर जब बाबा क्लास में आ रहे होते तो सब बच्चे देखते आज क्या टोकरी में माल आ गया, उसमें गुलाब का पौधा भी है तो मोतिये का भी है तो गेंदे का भी है, सब प्रकार के फूल होते। बाबा कई बार कहते थे बच्चे आते जाओ, जिसको जो जो फूल पसंद है वो लेते जाओ, लेकिन देखना जैसे तुम हो वैसा ही फूल लेना। अब सोचिए लेना तो सभी चाहते हैं गुलाब का फूल ले, लेकिन अब ले किस मुंह से, किसको बाबा नहीं जानता, बाबा भी जानता है और हम बच्चे भी स्वयं को स्वयं भी जानते। कहता बच्चे ले लो जो पसंद आए ले लो, पसंद तो आ रहा है लेकिन ले कौन सा। तो कई बार वो फूल फूल ही रह जाते थे, कोई फूल लेते नहीं थे। कैसे लें? अगर एक साधारण सा फूल ले तो अपने को साधारण समझना, उस सर्वशक्तिमान के बच्चे और हम उनके सामने समझे हम साधारण है तो ये भी तो समझना अच्छा नहीं लगता, ये भी तो बाप की इंसल्ट है। जिसको बाबा ने आज ही कहा कि कोई कहे ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन फुर्सत में मैं आऊंगा, तो बच्चे ये बाप की इंसल्ट करना है, क्योंकि ज्ञान अच्छा है, ज्ञान दाता ज्ञान देता है, और ज्ञान देने वाला कहे कि फुर्सत होगी तो आऊंगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा मुख से जन्म लिया बच्चों ने, और ऐसे मुख से जन्म लेने वाले बच्चे अपने आप में वो गेंदा उठा ले या रतन ज्योत उठा ले या कोई और साधारण पुष्प उठा ले तो उठाने में भी तो संकोच आता है कि अभी तक हमारी स्थिति क्या यहाँ तक पहुंची। बाबा तो हम बच्चों को गुलाब का पुष्प बनाना चाहते हैं, फूलों का राजा बनाना चाहते हैं, साधारण नहीं बनाना चाहते। तो मैं यही आप सबको देखकर मुझे याद आ रहा था कि आज बाबा साकार में होते तो आपको जरा दिखाई देता, अभी अव्यक्त रूप में वो पालना दे रहे हैं। कैसे बाबा बच्चों को जब देखते थे तो कितनी खुशी हो जाती थी, आज बाप का घर शोभायमान हो गया, बाबा के घर में बच्चे आ गए रौनक लग गई। तब बाबा कहते थे भोली अच्छी अच्छी चीजें बनाना, मेरे बच्चे आए हैं, मेरे बच्चे आए हैं, नई नई सब्जी बनाना। बड़ी खुशी बाबा को लगती थी, कौन आए हैं, कल के बिछड़े हुए मेरे बच्चे मुझे आकर मिले हैं। और कभी कभी बाबा पूना में हलवाई होता था तो कहता था हलवाई को जल्दी लिखो कि वो जल्दी जल्दी आ जाए, मेरे बच्चे आए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाएगा और मेरे बच्चों को खिलाएगा। वो हलवाई भी ऐसा ही होता था कि बाबा को पूछता बाबा क्या बनाऊं, खड़ा हो गया, बाबा कहते अच्छा बच्चे आज गुलाब जामुन बना लो, कितने बनाऊं, 250 बच्चे हैं 300 बना लो। 300 गुलाब जामुन पता नहीं वो कितनी जल्दी बना करके फिर आके खड़ा हो जाता, बाबा अब क्या बनाऊं, बाबा कहते तो भूत आ गया, जो उसको कहते थे ना काम दे दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा, ये तो वही आ गया कि अभी दे दो तो अभी बना के मिनट में बना के ले आते, अभी क्या बनाओ। तो एक बार बाबा ने कहा बच्चे ज्यादा टाइम किस में लगता है, ज्यादा टाइम तो कहा बालूशाही बनाने में, बाबा ने कहा फिर ठीक है आज तो बालूशाही बना ताकि थोड़ा समय तो लगाए, ये तो मिनट में आ जाता है बना के, और फिर आके कहते अब क्या बनाओ अब क्या बनाओ। और बाबा को खुशी भी बहुत होती थी, वैसे तो बच्चों को दे दे तो हाथ से भी बच्चे खा सकते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाता, और कई बार वो गरम गरम गुलाब जामुन डिब्बे में डाल करके एक बार उसने दिए। बाबा डिब्बे भी ऐसे मिलते हैं बाजार में, मैंने भी डिब्बे बना दिए हैं। तो बाबा को गरम गरम गुलाब जामुन बाबा कैसे फूंक लगा के ठंडा करके एक एक बच्चे को खड़ा करके ऐसे मुंह में नहीं डाल रहा, एक एक बच्चा गले लग रहा है और फिर उसके मुख में गुलाब जामुन डाल रहा है। आप सोचिए वो प्यार और वो स्नेह, वो ईश्वर का गले लगाना, वो उसका उनकी मैल अंदर की मैल को धो देना, देह अभिमान को समाप्त करना, ये बाबा का उस समय बच्चों को प्यार था। प्यार प्यार से बच्चों को बाबा ने बहुत सुंदर पाला। तो मैं अभी अगर वो सुनाने लग जाऊंगी तो फिर मैं उसी में ही चली जाऊंगी, इसलिए विषय है कि तीव्र पुरुषार्थ। अब तीव्र पुरुषार्थ के लिए देखा जाए तो हम तीव्र पुरुषार्थ क्या करें, क्योंकि हम सब समझते हैं जन्म जन्मांतर के विकर्मों को हमें विनाश करना है, और 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य भी जमा करना है, ये भी सबको मालूम है। देह अभिमान को खत्म करना है और देही अभिमानी स्थिति का निर्माण करना है, ये भी सबको मालूम है। इस पुरानी देह अभिमान की सृष्टि से मन बुद्धि को हटाना है और नई सृष्टि में अपनी मन बुद्धि को लगाना है। कैसे अपने संस्कार तमोगुणी संस्कारों से मुक्ति पानी है और जन्म जन्मांतर के लिए सतोगुणी संस्कारों का खजाना हमने इकट्ठा करना है, ये सब पुरुषार्थ हमको अभी करना है। इसके लिए फिर समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय। इतने थोड़े समय में विकर्मों को विनाश भी कर लें और सुकर्मों का खाता भी जमा कर लें तो आप समझ सकते हैं। और जाने से, घर जाने से पहले बाबा ने यह भी कहा है कि मनुष्य से देवता नहीं बन जाओगे सीधे, पहले मनुष्य से फरिश्ता बनोगे और फरिश्ते से देवता बनोगे। तो फरिश्ता बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जरूर है हमें डबल लाइट बनना होगा, देह अभिमान का भी बोझ नहीं हो और किसी प्रकार के पुराने संस्कारों का भी बोझ नहीं हो, और अपना ये बोझिल चोला भी हमारी कॉन्शियस से हटता चला जाए। लाइट होना है तो लाइट होने के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में भय, चिंता ये सब चीजें नहीं हो। अगर भय है किसी भी चीज का, चिंता है किसी भी बात की, तो हम कभी लाइट नहीं रह सकते। तो घर जाने से पहले लाइट होना है, और ज्ञान और योग के पर हमारे इतने तेज हो जाएं जो हमारी यहां से उड़ान अपने घर की तरफ चले। अब ये सब कुछ हमें करना है, इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, समय कम है, थोड़े समय में संपूर्ण बनना है। चेक करके देखो मेरा लक्ष्य क्या है और मेरा वर्तमान समय पुरुषार्थ की स्थिति क्या है। क्या मेरे पुरुषार्थ की स्थिति मेरे लक्ष्य के समीप है, या मेरा लक्ष्य और मेरे लक्षण जो पुरुषार्थ की स्थिति है उसमें कुछ दूरी है। क्या ये दूरी इस संगम के थोड़े समय में पूरी हो सकती है, या इसके लिए कुछ और लंबा समय चाहिए। जिसके लिए बाबा कहते हैं कि कोई अगर आपसे भूल हो जाती है, मान लीजिए आप छोटी सी बात में इरिटेट हो जाते हैं, कोई आपको अपमान करे, आपको सहन नहीं होता है, आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं और आप कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, मैं किसी की अपमान की बात को सहन नहीं कर सकता या किसी का निरादर मुझे सहन नहीं होता। तो इस संस्कार को बदलने के लिए आपको कितना समय और लगेगा? अगर वो बार बार वो संस्कार रिवाइज होता रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक संस्कार के बदलने में लंबा समय लग रहा है तो और कई संस्कारों को बदलने में क्या मेरे पास 300-400 वर्ष हैं जो आराम से हम अपने संस्कारों को बदलें? इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा तीव्र पुरुषार्थ करो बच्चे, तेज भागो। और तेज भागने को मैं कहूंगी हमारे पुरुषार्थ में वर्तमान समय के अनुसार जितना समय है उसके अनुसार जो मंजिल को पाने के लिए हम सब उपस्थित हैं उसके अनुसार हमारे जो स्पीड है उसको कहते हैं हमारे में रेस स्पिरिट होनी चाहिए। अब रेस स्पिरिट का मतलब क्या है? कभी आपने रेस देखी होगी, छोटे बच्चे भी रेस करते हैं और वैसे भी कई रेसेस कई प्रकार की होती हैं। रेस स्पिरिट में मान लीजिए 5 रेस में भाग ले रहे हैं और 5 खड़े हैं, लकीर लगी हुई है, इस लकीर तक आपको खड़े होना है, इससे आगे पांव नहीं ले जाएंगे। और सामने स्पॉट है, उसको आपने छूना है। इधर रेफरी ने अपने मुख में क्या डाला है? विसल। वो विसल डाली है, अभी विसल वो डालता ही है तो भाग उठते हैं, कहते वापिस अभी तो विसल डाली है, पहले कहां जा रहे हो? क्योंकि सब तैनात ऐसे खड़े हैं, रेस स्पिरिट है। और जो ही रेस की विसल होती है तो रेस के पार्टिसिपेंट्स भाग उठते हैं उस मंजिल को हाथ लगाने के लिए। और उस पॉइंट तक पहुंचने की कंडीशन क्या है? अगर किसी ने पहुंचने का इरादा रखा है तो वो ना दाएं देखे ना बाएं देखे। अगर वो दाएं वालों को देखता है, बाएं वालों को देखता है, आगे भागने वालों को देखता है, पीछे वालों को देखता है, तो कभी अपने स्पॉट तक पहुंच नहीं सकता। अगर उसने लक्ष्य रखा है मुझे रेस में तीव्र जाना है तो वो दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखेगा। उसका एक लक्ष्य है, इस गोल को मुझे पाना है, तभी वो उस गोल को पा सकता है। चलते चलते हम कई बार कह देते हैं कि हमारा पुरुषार्थ ठीक ही है, हमसे पहले चलने वाले, हमने देखा कि कई बातों में अभी तक वो कच्चे हैं, उनसे तो हम अच्छे हैं। किसी को देखा हमसे आगे निकल गया, हम बराबर थे, इकट्ठे ही आए, लेकिन उसका पुरुषार्थ तीव्र है, हम निरुत्साहित हो जाते हैं, हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं लक्ष्य को पा सकेंगे, नहीं पहुंच सकते। कभी निरुत्साहित ना हो जाए, कभी पीछे मुड़कर ना देखें, किसी कमजोर को ना देखें, किसी की कमी या कमजोरी को ना देखें। कौन क्या है, सबके कर्म उनका फल देते हैं और हर कर्म का नियंता वो बैठा है। मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा काम है मुझे उस लक्ष्य को पाना है। और लक्ष्य को पाने के लिए जो मेरा रेफरी, जो विसल उसने दी है, उस संसार उसी कदम में मुझे चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जब तक हमारा ये स्थिति नहीं होगी तब तक हम पुरुषार्थ में तीव्र नहीं जा सकते। हम कभी बीती बातों को सोचते, कभी आने वाली बातों का चिंता करते, कभी आसपास वालों के गुण अवगुण को, दोषों को देखते हैं, कभी किसी के आगे निकल जाने से अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। कई प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं जिससे हम पुरुषार्थ में नहीं आगे जा सकते। इसलिए श्री बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे बाबा क्या कहता है और लक्ष्य क्या है, तुझे केवल लक्ष्य तक जाना है। जहां तक तू जा सकता है चल, जहां देख मेरी अड़चन आ रही है, मैं पूरा नहीं जा पाता हूं, कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा जोड़ कर रखना। तेरे में जो कमी होगी उस कमी को भरने के लिए मैं बैठा हूं, मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जो शक्ति तेरे पास नहीं है। कई बार हम स्वयं डिसीजन ले लेते हैं, बाबा थोड़ी करेगा, करना तो मुझे ही है, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा। दाता कहते हैं तेरे से नहीं हो पा रहा, मैं करूंगा। एक छोटा बच्चा आप देखिए, अगर हिम्मत रखता है, लेटा हुआ है और लेटा हुआ देखता है सब खड़े हैं, या उसके पास सब बैठे हैं लेकिन वो लेटा हुआ है। कुछ समय जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो लेटा हुआ फुदकियां मारता है, किस लिए, मुझे कोई बिठाओ, तुम सब बैठे हो मैं लेटा हूं। जब वो ऐसे ऐसे करता है तो माँ बाप बहन भाई कोई भी पकड़ के उसको हाथ से बिठाते हैं, बड़ा खुश है, समझते है मैंने बैठना शुरू कर लिया। हालांकि वो बैठ नहीं सकता लेकिन उसका पकड़ा हुआ है हाथ, और पकड़ के ऐसे बिठाया है, और वो ऐसे समझता है सब हिलडुल रहे हैं मैं भी ऐसे कर सकता हूं, लेकिन उसको ध्यान रखा हुआ कहीं गिर ना जाए। और बैठने के बाद जब वो खड़ों को देखता है तो फिर थोड़ा फुदकी लगाता है कि मैं बैठा हूं ये सब खड़े हैं। फिर माँ पकड़ती है उसको कंधों से, एक मेज के साथ उसको खड़ा करती है, और खड़ा करके फिर उसको चलना सिखाती है। जब उसके अंदर से उमंग होता है, उल्लास होता है, आप सोचिए एक माँ बाप भी अपने बच्चे की देखते हैं, इसका दिल है खड़ा होने का, इसका दिल है बैठने का, इसका दिल है चलने का, ये हिम्मत रख रहा है, तो वो करते हैं। ईश्वर कहते तुम हिम्मत रखो, क्या मैं तुम्हें शक्ति नहीं दूंगा? कभी सोच सकते हैं इतना नन्ना सा बच्चा जो पड़ा हुआ है जिसको अपनी होश नहीं, वो चल फिर कर एक हवाई जहाज चला के ले जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाता है। तो दाता भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ कराने कोई इंसान नहीं आया, स्वयं भगवान आया है। और फिर हमको खुशी की बात सुनाता है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मैं कहता हूं उसके संस्कार तेरे में है, तू उन संस्कारों से भरपूर है, क्योंकि तो कल पहले वाला वही बच्चा है जो इस धरा पर देव बना था। तेरी देव प्रतिमाएं पूजी जा रही हैं, गायन हो रहा है, तो वही है। तो केवल अपने आप को जानकर इस लक्ष्य को पाने का संकल्प दृढ़ कर तेरे सोई हुई वो शक्तियां जागेंगी, और मेरी याद से तुझे वो बल मिलेगा कि जो शक्ति तो स्वयं में नहीं समझता उस शक्ति से मैं तुझे बहादुर बना दूंगा। ऐसा विश्वास जानकर हम बाबा के अपने पुरुषार्थ को करें। कभी ये ना समझे हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, कई बंधन कई बाधाएं हैं। कहते है, तू इनकी चिंता ना कर, तो केवल लक्ष्य रख, मुझे इस चीज को पाना है, मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा। संसार में कहते हैं कि हरि द्वार को देखने की किसी की इच्छा हो तो कई लोग हरि द्वार का किसी को रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उसको टिकट नहीं देंगे कि हम टिकट भी देते हैं तुम चले जाओ। शिव बाबा हम बच्चों को उस मंजिल पर जाने का रास्ता ही नहीं बताते, टिकट भी देते, कहते तुम्हें शक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए, समय चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा, तुम एक मेरे से लिंक जोड़कर रखो, मैं करूंगा। क्योंकि दाता हम बच्चों को यही कहता है, ख्याल रखना नई सृष्टि में ले जाऊंगा, लेकिन नई सृष्टि में अगर आपके पास कोई ऐसे संस्कार हैं जो नई सृष्टि के अलाउड नहीं हैं, अगर वो संस्कार आपने नहीं बदले तो नई सृष्टि में कदम नहीं रख सकते। आज अपने देश से किसी विदेश में अगर जाते हैं और उस विदेश के लॉज के अनुसार हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते, पासपोर्ट ठीक नहीं, वीजा सही नहीं होता है, तो वहां की गवर्नमेंट जब चेकिंग करती है सब चीजों को, आपको स्टे कर लेगी कि आप नहीं जा सकते। मुझे याद है कि यूरोप वाले सोचते थे उस समय कि रशिया में हमें पासपोर्ट वीजा नहीं लेना पड़ता और हम बिना वीजा के ये डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास राइट हैं तो हम आ सकते। तो हमारे पास कुछ बहनें आई, लेकिन एक बहन बिना वीजा के थी, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, और जब डॉक्यूमेंट चेक हुए तो उसको कहा कि आप नहीं जा सकते, हमारे देश में आपको एंट्री नहीं मिल सकती। कहा मैं यूरोप से हूं, कहा यूरोप वालों को भी वीजा लेने की जरूरत, उन्हें वापस भेजा गया उनके देश में। ठीक है, वो फिर वीजा लेकर के आई। तो मेरा कहने का ये भाव है कि दुनिया में भी, इस संसार में, जिस देश में हमने जाना है, वहां के कागज, वहां का डॉक्यूमेंट सब ठीक होने चाहिए, तभी एंट्री मिलेगी। अब हम जाना चाहते हैं नई दुनिया में, नई दुनिया के लिए हमारे पास वो करेंसी भी तो चाहिए। आजकल करेंसी का भी देखा जाता है, आपका बैंक अकाउंट कितना है, सब कागज दिखाने पड़ते हैं, कितने वैल्यूज हैं आपके पास, कितने मूल्य आपने जीवन में धारण किए, क्या आपकी एंट्री हो सकती है? आपने किसी को सताया या दुख तो नहीं दिया? मान लीजिए आज भारत की सरकार से कोई छिप करके दूसरे देश में चला जाता है, लेकिन अपने देश में कोई दोष किया है, तो इंटरपोल को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फलां फलां नाम से व्यक्ति, ये उसका हुलिया है, सब उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपके देश में आ जाए तो उसे हमारे देश में लुटा दिया जाए। और सचमुच ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, अगर आपने किसी को सताया है, किसी को दुख दिया है, किसी को इरिटेट किया है, किसी को कांटा चुभाया है, और ये आपकी नेचर है, कहते मेरा स्वभाव है, मैं कभी ऐसा बोल देता हूं या मैं कभी ऐसा कर लेती हूं, स्वभाव तो है, लेकिन जो आपका स्वभाव किसी को दुख देता है, किसी को तंग करता है, किसी को इरिटेट करता है, कोई उस चीज से परेशान होता है, और आप समझते हो तो मेरा तो स्वभाव है, लेकिन आपके स्वभाव से कोई दुखी हो तो क्या आपको नई सृष्टि में एंट्री मिलेगी? कई देशों में कई चीजें ले जानी बहिष्कार होती है, नहीं ले जा सकते। मान लीजिए जैसे दुबई में है, आप कहते हैं वहां पर थोड़ी सी भी ये खसकास है, भारत में खसकास आम पीने में खाने में काम लाते हैं, लेकिन वहां नहीं ले जा सकते। कोई एक ले गया, कुत्ते ने मुंह डाल के पहचान लिया, पकड़ा गया, उम्र कैद मिली। अब उसे मालूम नहीं कि मुझे इस देश में खसकास नहीं ले जाना। अब मालूम नहीं आप किसी देश में एंट्री कर रहे हो तो देश में एंटर होने से पहले देश के लॉज तो देखो कि इस देश के कानून क्या है, लॉज क्या है। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कहता है, किसी चीज का अभिमान है, आपके पास ये ड्रग है एक प्रकार का, आप नहीं जा सकते मेरे देश में, किसी प्रकार का आपको नशा है, मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास मकान बहुत है, ठीक है, सब ज्ञान अच्छा है, सब समझ अच्छी है, योग लगाते हैं, लेकिन नशा नहीं जाता, तो थोड़ा भी नशा है तो वो नहीं जा सकता। तो बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे चेक करो वो चीजें जो आपकी नई सृष्टि में एंट्री देने में बंदिश बनेंगी, उनको यहां से कंट्रोल कर लो। किसी चीज का अभिमान है, किसी चीज का नशा है, किसी को दुख देना है, किसी को तंग करना है, ऐसे संस्कार मेरे बच्चों में नहीं होने चाहिए। जिसमें मैं बीच में एक बात सुनाती हूँ, इस समय बाबा हमारा धर्म राज होगा जब होगा, अभी हमारा पिता है, कैसे पिता बन के अब बच्चों को प्यार से सब समझाता है। जिसका मुझे बात करते करते एक एग्जाम्पल याद आया कि बाबा दिल्ली में आए एक बार, तो कमला नगर सेवा केंद्र जो प्रथम सेवा केंद्र था वो थर्ड फ्लोर पर था, लेकिन बाबा मामा वहां ही आए, लेकिन वो कोई इतना रहने का स्थान नहीं था, और कोई आने वाले अतिथि अन्य भाई बहन आए तो उनके रहने का स्थान नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब बाबा को बुलाया गया तो बाबा को एक माता का बंगला था, उनसे कहा गया कि आपके बंगले में अगर हम बाबा को बुलाएं, क्योंकि आप अकेली ज्ञान में चलती हो तो आपका पति ज्ञान में नहीं चलता, तो क्या वो अलाउ करेगा कि बाबा वहां आए। तो उस माता ने बड़े प्यार से कहा, मैं पति से पूछ के आपको बताती। तो पति ने कहा, अगर तुम चाहो, पति पत्नी का संबंध अच्छे थे, अगर तुम चाहो तो वो अवश्य आ जाए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं। तो बाबा उनके बंगले में आके ठहरे थे। स्वाभाविक है कि जिसके घर मेहमान आए वो स्वयं बाबा की सभा में आके बैठता था रोज और ज्ञान सुनता था, और नेचुरली घर में बाबा रहे हुए हैं तो वो बाबा से मिलता जुलता बातचीत करता, बड़ा फ्री हो गया। और एक बार बाबा के पास आकर कहा, बाबा अकेले आया, मैं आपको अपनी एक बात सुनाने आया हूँ, लेकिन बाबा मुझे मना नहीं करना, साथ कंडीशन भी दे दी, लेकिन बात मैं सुनाने आया हूँ। तब बाबा ने कहा, बोलो बच्चे क्या बात। कहा, बाबा मैं जब 11 साल का था तब से और अभी तक 4 चम्मच लेता हूँ। समझ सकते किस चीज के चम्मच होंगे, वो कोई नशे के हैं। मैं 4 चम्मच लेता हूँ, ज्यादा नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे 4 चम्मच के बदले तुम विश्व की बादशाही गवा देना चाहते हो। कहा, बाबा मैंने कहा था ना मुझे मना नहीं करना। बाबा ने कहा, नहीं मना नहीं कर रहा, तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन उसने 4 चम्मच छोड़े नहीं थे। ठीक है, बाबा से बात हो गई। अपने समय पर वो सहयोगी बहुत बना, और जब अपना समय आने पर उसने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने पर उसकी पत्नी भोग लगाने के लिए मधुबन में ही आती थी, और एक साल पहले साल भोग लगाया, सेकंड साल जब भोग था तो गुलजार दादी जी, मैं, जगदीश भ्राता जी और एक भंडारे वाली माता, सेंटर में 4 ही रहते थे। तो मैं जब, दादी ने कहा इस बार इस माता को लेकर आप जाओ, इसको सरदार जी के लिए भोग लगाना होता है, होंगे सरदार जी इसका पति होगा, मुझे कोई कहानी नहीं मालूम क्योंकि मैं कभी पहले उससे ज्ञान में आई नहीं थी। और उस समय भोग लगा, ये जहां ईशु बहन का ऑफिस है इससे पहले थोड़ी खुली उधर जगह थी, यही हॉल होता था। तो भोग 12 बजे के टाइम लगा, और उस समय कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती थी तो संदेशी तन में उसका आवाहन भी होता था, मिलती थी, बातचीत करके जाती थी। ये बात में बाबा ने सब बंद करा दिए, भाव ने कहा अब एग्जामिनेशन और पढ़ाई के दिन हैं, अब खेल पाल के दिन नहीं रहे। तो उस माता को यही था कि साल में एक बार मैं पति से मिल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो भोग लगा, तो भोग में ऐसे भोग रखा है, संदेशी ये बैठी है, मम्मा बाबा सामने बैठे हैं और पांच छह बहनें होंगी, पांच छह भाई होंगे, ऐसे इतने बैठ करके भोग लगा रहे थे। तो संदेशी बहुत जल्दी वापिस आ गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गई, भोग लग भी गया आ भी गई। तो उसने आके कहा कि बाबा ने मुझे वापस भेजा है कि ये बच्चा देसी घी खाता था, कभी दूसरा तेल वेल नहीं खाता था, तो इसको देसी घी का भोग बना के दे, वो मैं स्वीकार कराऊंगा, बाकी चीज इसको स्वीकार नहीं होगी। इतना प्यार। उसी समय भोली दादी ने चार छह पूरी है छोटी छोटी, थोड़ी सी आलू की सब्जी, हलवा जो भी बनाना था, मैं समझती हूँ 15-20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने तीनों चारों चीजें बना दी। और 15-20 मिनट तक सब योग चलता रहा। भोग बनकर आ गया, संदेशी गई पुणे, जरूर बाबा ने उसे स्वीकार कराया। और थोड़े दिन समय के बाद वो आत्मा संदेशी तन में आती है। जब संदेशी तन में आती है तो जू ही बाबा को देखता है ऐसे, तो उसकी आंखों से ऐसे आंसू निकले जो सुनते थे कि झड़ी लग गई। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसे मोटे मोटे आंसू ऐसे गिरते चले जा रहे हैं। तो भी सरदार जी आए हैं तो रो क्यों रहे हैं, मुझे नहीं कुछ मालूम, लेकिन बहुत रो रहे थे। बाबा ने अपनी पॉकेट से रुमाल डाला, निकाला और निकाल करके उस बच्चे की आंखें पोंछ दी। आंखें पोंछते हुए उसे प्यार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बच्चे अब जो हो गया सो हो गया, अब रो ने मीठे बच्चे अब नहीं रो। समय बीत गया, जो होना था हो गया। ये क्या दृश्य था, क्योंकि वो आत्मा को रियलाइज हो रहा है बाबा के सन्मुख आकर कि मुझे कहा था चार चम्मच छोड़ दो, अब मुझे इस चीज का मालूम नहीं था। मैंने बाद में उनकी पत्नी से पूछा, सरदार जी क्यों रोए, क्या बात थी? तो उनकी पत्नी ने मुझे कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे बाबा ने उन्हें कहा था छोड़ दो, विश्व की बादशाह ही गवा दोगे, लेकिन इन्होंने माना नहीं था। तो उसी का ही पश्चाताप दिखाई दे रहा था। तो पश्चाताप में रो रहा है, देखिए प्यार कितना उसने दिखाया कि मेरा बच्चा देसी घी ही खाता था, देसी घी का भोग ही बनेगा, तब ही मैं इसे स्वीकार कराऊंगा। और दूसरी तरफ जब वो आत्मा रियलाइज कर रही है बाबा के सामने और उसको पश्चाताप हो रहा है अब रियलाइज, तो उसको रिमाइंड कराया जा रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था सो हो गया, बच्चे अब रो नहीं। उसके आंसू पोंछ रहे हैं लेकिन ये नहीं कहा अच्छा बच्चे चलो हो गया माफ कर दूंगा, खत्म। जो बाबा कहते हैं समय ऐसा आएगा लास्ट, इधर प्राप्तियां करने वालों की लाइन होगी, इधर पश्चाताप वालों की लाइन होगी। बच्चे किस लाइन में जाना है, इसके लिए बाबा बच्चों को बार बार कहता है मेरी दुनिया में एंट्री मिलेगी, कौन प्रवेश हो सकेगा जिसका जीवन ऐसा होगा, कौन सी चीजें बैन हो जाएंगी, किसी को इरिटेट किया, किसी को दुख दिया, किसी को नाराज किया, किसी को निराश किया और बिरपरवाह नहीं होने तो होते हैं तो हम क्या करेंगे। ये एक प्रकार का दुख देना है और वो एंट्री नई दुनिया में ऐसी आत्माओं की नहीं होती। तो बाबा बच्चों को कहता है इस समय पुरुषार्थ का टाइम है। बच्चे पुरुषार्थ में जो परिवर्तन ईश्वरीय आज्ञा अनुकूल बच्चों को मैं कहता हूँ उस परिवर्तन को जीवन में लाते जाओ, और जो कमी और कमजोरी है उसको चेक करके चेंज कर दो। अभी समय है, फिर समय पश्चाताप का समय होगा, फिर प्राप्तियों का समय नहीं होगा। अभी तो प्रभु प्राप्तियों का समय, इसलिए बाबा हमको कहता है कि मैं तुम्हें परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात है हमें रियलाइज हो जाए ये राइट है ये रॉन्ग, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि राइट मुझे करना है रॉन्ग मुझे तजना। और तीसरी बात है स्ट्रॉन्ग बन जाए, रास्ते में विघ्न बाधाएं अड़चने बहुत आएंगी लेकिन विघ्न बाधाएं अड़चनों में मैं रुकने वाली आत्मा नहीं, मुझे आगे ही आगे कदम बढ़ाना है। तो हमारे जीवन का अवश्य परिवर्तन होगा और हम अपनी स्पीड को तेज कर सके। ओम शांति। टाइम जवाब दे रहा है क्योंकि 11:30 बजे तक मुझे कहा गया था। आप सुन तो ऐसे रहे जैसे अभी शुरू ही हुआ है लेकिन पूरा हो गया।